काम। त्रासदी ने नौकरी पर प्रहार किया। ऐसा प्रतीत होता है कि अय्यूब उन कुलपतियों में से एक था जिनसे परमेश्वर ने बात की थी। अय्यूब ने नूह की तरह ही परमेश्वर को होमबलि चढ़ाई। पृथ्वी पर उसका समय अनिश्चित है। वह संभवतः समुद्र के दक्षिण और पूर्व में उसकी भूमि पर रहता था जिसे बाद में मृत सागर नाम दिया गया। वह जिस समय जीवित रहा वह चालडीज के युआर से इब्राहिम या सेलम से मलिकिसिदक के पहले, उसके दौरान या बाद में हो सकता था, संभवतः बाद में यरूशलेम हो सकता था। परमेश्वर ने शैतान से जो कहा उसके अनुसार अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था। शैतान ने अय्यूब के धर्मी होने के कारण पर प्रश्न उठाया। इसलिए परमेश्वर ने अय्यूब की धार्मिकता का परीक्षण करने की अनुमति दी। पहले उनकी संपत्ति, फिर उनका परिवार और उसके बाद उनका स्वास्थ्य। अय्यूब की पत्नी ने उसके सारे दुखों को बढ़ाते हुए कहा, क्या आप अभी भी अपनी ईमानदारी पर कायम हैं? भगवान को शाप दो और मर जाओ। लेकिन उसने उससे कहा, तुम मूर्ख महिलाओं में से एक की तरह बोलती हो। क्या हम परमेश्वर से भलाई ही ग्रहण करें और बुराई न ग्रहण करें? इस सब में अय्यूब ने अपने होठों से कोई पाप नहीं किया। अय्यूब के कुछ दोस्तों ने उसकी विपत्ति के बारे में सुना और उसे सांत्वना देने और उससे सहानुभूति रखने के लिए उसके पास गए। वे उसे देखकर रोए और सात दिन तक कुछ न कहा गया। आखिरकार अय्यूब को अपने ऊपर तरस आया और वह अपनी हालत पर विलाप करने लगा। अय्यूब ने अपना मुंह खोला और अपने जन्म के दिन को कोसा। उसने कहा, मेरे जन्म का दिन नष्ट हो जाए और वह रात भी नष्ट हो जाए जिस रात कहा गया कि एक लड़का उत्पन्न हुआ। मैं जन्म लेते ही क्यों नाश नहीं हो गया और गर्भ से आते ही क्यों नहीं मर गया? या फिर मैं मरे हुए बच्चे की नाई या उस शिशु की नाई जिसने कभी दिन का उजाला न देखा हो भूमि में क्यों न छिपा दिया गया? जिस बात का मुझे भय था वह मुझ पर आ पड़ी है, जिस बात का मुझे डर था वही मेरे साथ हुआ। मुझे न शांति है न शांति, मुझे कोई आराम नहीं है, केवल उथल पुथल है। त्रासदीपूर्ण हमलों से मुख्य बिंदु। परमेश्वर अपने धर्मी लोगों को जानता है। शैतान भी उन्हें जानता है और उनके और भगवान के बीच के रिश्ते को नष्ट करना चाहता है। परमेश्वर के धर्मी लोग जानते हैं कि परमेश्वर उन्हें जानता है और वे कैसे अधर्मियों के बीच धार्मिकता से रहते हैं। धर्मी का रवैया अय्यूब के समान होना चाहिए। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया, प्रभु के नाम की स्तुति की जाए। एलीपज बोलता है, यदि कोई तुमसे कुछ कहने का साहस करे तो क्या तुम अधीर हो जाओगे? लेकिन बोलने से कौन बच सकता है? सोचो कि तुमने बहुतों को कैसे शिक्षा दी है, कैसे निर्बल हाथों को दृढ़ किया है। तेरे शब्दों ने ठोकर खाने वालों को सहारा दिया है, तूने लड़खड़ाते घुटनों को बलवंत किया है। परंतु अब विपत्ति तुम्हारे पास आती है और तुम निराश हो जाते हो, यह तुम पर प्रहार करता है और तुम निराश हो जाते हो। क्या आपकी धर्मप्रायणता, आपका आत्मविश्वास और आपका निष्कलंक आचरण आपकी आशा नहीं होनी चाहिए? अब विचार करो, कौन निर्दोष होते हुए भी कभी नष्ट हुआ है? सीधे लोग कहाँ कभी नष्ट हुए? जैसा कि मैंने देखा है, जो बुराई बोते हैं और जो मुसीबत बोते हैं वे ही काटते हैं। परमेश्वर की सांस पर वे नष्ट हो जाते हैं, उसके क्रोध के प्रकोप से वे नष्ट हो जाते हैं। क्या कोई नश्वर व्यक्ति ईश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है? क्या कोई मनुष्य अपने रचिता से अधिक पवित्र हो सकता है? चाहो तो बुलाओ, लेकिन तुम्हें जवाब कौन देगा? आप किस पवित्र व्यक्ति की ओर फिरेंगे? क्रोध मूर्ख को मार डालता है और ईर्ष्या सीधे साधे को मार डालती है। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर सुधारता है। इसलिए सर्वशक्तिमान के अनुशासन का तिरस्कार मत करो। हमने इसकी जांच की है और यह सच है, तो इसे सुने और इसे अपने ऊपर लागू करें। नौकरी जवाब देती है, काश मेरी पीड़ा को तौला जा सकता और मेरे सारे दुख तराजू पर रखे जा सकते। यह निश्चित रूप से समुद्र की रेत से अधिक भारी होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे शब्द उग्र रहे हैं। ओह कि मेरी विनती पूरी हो जाती, कि ईश्वर मेरी आशा को पूरा कर देता, कि ईश्वर मुझे कुचलने, अपना हाथ ढीला करने और मुझे काट डालने को तैयार होता। तब भी मुझे यह सांत्वना मिलेगी, अथक पीड़ा में मेरी खुशी कि मैंने पवित्र के शब्दों से इनकार नहीं किया है। एक निराश व्यक्ति को अपने मित्रों की भक्ति करनी चाहिए, भले ही वह सर्वशक्तिमान का भय त्याग दे। लेकिन मेरे भाई रुक रुक कर आने वाली धाराओं की तरह भरोसेमंद हैं। अब तो तुम भी काम के न रह गए, आप कुछ भयानक देखते हैं और डरते हैं। क्या मैंने कभी कहा है, मेरी ओर से कुछ दो, अपने धन में से मेरे लिए फिरौती दो, मुझे शत्रु के हाथ से छुड़ाओ, मुझे निर्दयी के चंगुल से छुड़ाओ। मुझे व्यर्थ के महीने और दुहक की रातें दी गई हैं। जब मैं लेटता हूँ तो सोचता हूँ, कब तक उठूंगा, रात खींचती जाती है और मैं भोर तक करवट लेता रहता हूँ। मेरा शरीर कीड़ों और पपड़ियों से ढका हुआ है, मेरी त्वचा टूट गई है और सड़ रही है। मनुष्य क्या है कि तुम उस पर इतना ध्यान देते हो, कि तुम उस पर इतना ध्यान देते हो, कि तुम हर सुबह उसकी जांच करते हो और हर पल उसकी परीक्षा लेते हो। क्या तुम कभी मुझसे दूर नहीं देखोगे या मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ोगे? यदि मैंने पाप किया है तो हे मनुष्यों के देखने वालों, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुमने मुझे अपना लक्ष्य क्यों बनाया है? क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूँ? तू मेरे अपराधों को क्षमा क्यों नहीं करता और मेरे पापों को क्षमा क्यों नहीं करता? एलीपस और अय्यूब से मुख्य बिंदु। लोग अक्सर जीवन की त्रासदियों को ईश्वर की ओर से प्रत्यक्ष कार्रवाई के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि वास्तव में वे शैतान की ओर से होती हैं। आरोप लगाने वाले अपनी निंदा तथ्यों के बजाय राय पर आधारित करते हैं। दर्द और पीड़ा निराशा का कारण बन सकती है, जिसके परिणामस्वरूप ईश्वर के प्रेम पर संदेह हो सकता है। त्रासदी के समय में रवैया यह होना चाहिए, असहनीय दर्द में मेरी खुशी यह है कि मैंने पवित्र व्यक्ति के शब्दों से इनकार नहीं किया था। बिलदाद बोलता है, आप कब तक ऐसी बातें कहेंगे? आपके शब्द प्रचंड हवा हैं। क्या ईश्वर न्याय बिगाड़ता है? क्या सर्वशक्तिमान सही बात को बिगाड़ देता है? यदि तुम शुद्ध और सीधे हो तो अब भी वह तुम्हारे लिए उठ खड़ा होगा और तुम्हें तुम्हारे उचित स्थान पर पहुंचा देगा। निःसंदेह परमेश्वर किसी निर्दोष मनुष्य को अस्वीकार नहीं करता या दुष्टों के हाथ मजबूत नहीं करता। वह फिर भी तुम्हारे मुंह को हंसी से और तुम्हारे होठों को आनंद के जय जयकार से भर देगा। तेरे शत्रु लज्जित होंगे और दुष्टों के तंबू फिर न रहेंगे। नौकरी जवाब देती है, मैं जानता हूं कि ये सच है, लेकिन एक नश्वर व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी कैसे हो सकता है? यद्यपि कोई उससे विवाद करना चाहता था, परंतु वह हजारों में से एक बार भी उसे उत्तर नहीं दे पाता था। उनकी बुद्धि गहन है, उनकी शक्ति विशाल है। किसने उसका विरोध किया और बेदाग निकल आया? फिर मैं उससे विवाद कैसे कर सकता हूं? मुझे उसके साथ बहस करने के लिए शब्द कैसे मिल सकते हैं? यद्यपि मैं निर्दोष था तो भी उसे उत्तर न दे सका। मैं केवल अपने न्यायाधीश से दया की याचना कर सकता था। वह मेरे जैसा आदमी नहीं है कि मैं उसे जवाब दूं, कि हम अदालत में एक दूसरे का सामना कर सकें। काश कोई हमारे बीच मध्यस्थता करता और हम दोनों पर अपना हाथ डालता, कोई परमेश्वर की छड़ी को मेरे ऊपर से हटा देता कि उसका भय मुझे फिर न डराता। तब मैं उससे बिना डरे बोलूंगा, लेकिन जैसा कि अब यह मेरे साथ खड़ा है, मैं नहीं कर सकता। मुझे अपने जीवन से घृणा है, इसलिए मैं अपनी शिकायत पर पूरी छूट दूंगा और अपनी आत्मा की कड़वाहट के साथ बोलूंगा। मैं भगवान से कहूंगा, मेरी निंदा मत करो। मुझे बताओ कि तुम्हारे पास मुझ पर क्या आरोप हैं? फिर तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला? काश किसी की नज़र मुझे देखने से पहले ही मैं मर गया होता। काश मैं कभी अस्तित्व में ही न आया होता या सीधे गर्भ से कब्र में ले जाया गया होता। क्या मेरे कुछ दिन लगभग खत्म नहीं हो गए हैं? मुझसे दूर हो जाओ ताकि मुझे उस स्थान पर जाने से पहले एक पल का आनंद मिल सके जहां वापसी संभव नहीं है। निराशा और गहरी छाया की भूमि पर, सबसे गहरी रात की भूमि पर, गहरी छाया और अव्यवस्था की भूमि पर, जहां प्रकाश भी अंधकार जैसा है। बिलदाद और अय्यूब से मुख्य बिंदु। खासकर दोस्तों के कठोर और निंदात्मक शब्द दुख पहुंचाते हैं। निराशा में व्यक्ति को यह याद रखने की जरूरत है कि ईश्वर न्यायकारी, धर्मी और दयालु है। नश्वर मनुष्य अपने नश्वर जीवन के बारे में ईश्वर से बहस करने में असमर्थ है। ईश्वर किसी निर्दोष व्यक्ति को अस्वीकार नहीं करता, लेकिन एक नश्वर व्यक्ति ईश्वर के सामने धर्मी कैसे हो सकता है? जोफर बोलता है, क्या ये सभी शब्द अनुत्तरित रह जाएंगे? क्या इस बात करने वाले को दोष मुक्त किया जाना चाहिए? क्या आपकी बेकार की बातें लोगों को चुप करा देंगी? जब तुम उपहास करोगे तो क्या कोई तुम्हें डांटेगा नहीं? तुम परमेश्वर से कहते हो, मेरा विश्वास निर्दोष है और मैं तेरी दृष्टि में शुद्ध हूँ। ओह, मैं कैसे चाहता हूँ कि ईश्वर बोले कि वह आपके विरुद्ध अपने होंठ खोले और आपको ज्ञान के रहस्यों को प्रकट करे, क्योंकि सच्चे ज्ञान के दो पहलू होते हैं। यह जान लो, परमेश्वर ने तुम्हारे कुछ पापों को भी भुला दिया है। दुष्टों की आंखें चौंधिया जाएंगी और वे बच न सकेंगे, उनकी आशा मरती हुई हांफ बन जाएगी। नौकरी जवाब देती है, लेकिन मेरे पास भी तुम्हारे जैसा दिमाग है, मैं तुमसे कमतर नहीं हूँ। आराम पसंद लोग दुर्भाग्य को वैसे ही नापसंद करते हैं जैसे उन लोगों को जिनके पैर फिसल रहे हैं। जानवरों से पूछो, वे सिखाएंगे, पक्षी तुम्हें बताएंगे, मछलियां तुम्हें बताएंगी कि भगवान का हाथ हर प्राणी का जीवन और सभी मानव जाति की सांस है। बुद्धि और शक्ति परमेश्वर की है, सलाह और समझ। वह विश्वस्त सलाहकारों के होठों को बंद कर देता है और बड़ों का विवेक छीन लेता है। वह रईसों को अपमानित करता है और शक्तिशाली लोगों को निहत्था कर देता है। यह सब मेरी आंखों ने देखा है, मेरे कानों ने सुना और समझा है। जो तुम जानते हो वह मैं भी जानता हूं, मैं तुमसे कमतर नहीं हूं। लेकिन मैं सर्वशक्तिमान से बात करना चाहता हूं और भगवान के साथ अपने मामले पर बहस करना चाहता हूं। हालांकि आप मुझ पर झूठ का आरोप लगाते हैं, तुम सब एक निकम्मे चिकित्सक हो। काश आप पूरी तरह चुप होते। चुप रहो और मुझे बोलने दो, तो फिर जो भी हो मुझे आने दो। मेरी बातें ध्यान से सुनो, मैं जो कहता हूं उसे अपने कानों में सुनने दो। अब जब मैंने अपना मामला तैयार कर लिया है तो मुझे पता है कि मैं निर्दोष साबित होऊंगा। क्या कोई मेरे खिलाफ आरोप लगा सकता है? यदि ऐसा है तो मैं चुप हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। हे भगवान, मुझे केवल ये दो चीजें प्रदान करें। मैंने कितनी गलतियां और पाप किए हैं? मुझे मेरा अपराध और मेरा पाप दिखाओ। तुम अपना मुंह क्यों छिपाते हो और मुझे अपना शत्रु समझते हो? काश तू मुझे कब्र में छिपा देता और अपना क्रोध शांत होने तक छिपा रखता। काश तुम मेरे लिए एक समय निर्धारित करते और फिर मुझे याद करते। अगर कोई आदमी मर जाए तो क्या वह दोबारा जीवित होगा? अपनी कठिन सेवा के सभी दिनों में मैं अपने नवीनीकरण के आने की प्रतीक्षा करूंगा। तुम बुलाओगे और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। तू उस प्राणी की अभिलाषा करेगा जिसे तेरे हाथों ने बनाया है। निश्चय तब तुम मेरे कदम तो गिनोगे, परंतु मेरे पाप का हिसाब न रखोगे। मेरे अपराध थैली में बंद कर दिए जाएंगे, तुम मेरे पाप पर पर्दा डालोगे। जोफर के पहले भाषण के मुख्य बिंदु। पुरुषों का अधिग्रहण और प्रशंसा राय और कुछ तथ्यों पर आधारित होती है। अधिग्रहण के बचाव में आरोप लगाने वाले की निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि सच्चाई और तथ्यों के साथ आरोपों का सामना करना चाहिए। केवल ईश्वर ही मनुष्य के परीक्षण और कष्टों को जानता और समझता है। वह चाहता है कि शैतान द्वारा परीक्षण किए जाने के दौरान भी सभी उसके प्रति वफादार रहें। क्या हम अय्यूब की तरह परमेश्वर के सामने अपना मामला लड़ सकेंगे? शुक्र है कि यीशु मसीह हमारी विनती करेंगे, हम नहीं कर सकते। एलीपज फिर बोलता है, क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति खोखली धारणाओं के साथ उत्तर देगा? आप धर्मप्रायणता को भी कमजोर करते हैं और ईश्वर की भक्ति में बाधा डालते हैं। तेरा पाप तेरे मुंह को संकेत देता है, तुम धूर्तों की जीभ अपनाते हो। मेरा नहीं, तेरा अपना मुंह तेरी निंदा करता है, तेरे ही होंठ तेरे विरुद्ध गवाही देते हैं। तेरे मन ने तुझे क्यों बहका लिया है और तेरी आंखें क्यों चमकती हैं कि तू परमेश्वर के विरुद्ध अपना क्रोध भड़काता है और ऐसी बातें मुंह से निकालता है? मेरी बात सुनो और मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने क्या देखा है। दुष्ट मनुष्य जीवन भर यातना भोगता रहता है और क्रूर मनुष्य जीवन भर उसके लिए दुख उठाए रहता है। उसके कानों में भयानक ध्वनियां भर जाती हैं, जब सब कुछ ठीक लगता है तो लुटेरे उस पर हमला कर देते हैं। वह अंधेरे से बच निकलने की निराशा करता है, वह तलवार के लिए चिन्हित है। वह इधर उधर घूमता है गिद्धों के लिए भोजन, वह जानता है कि अंधकार का दिन निकट है। संकट और पीड़ा उसे आतंक से भर देते हैं, संकट और पीड़ा उसे भय से भर देते हैं, वे उस पर हावी हो जाते हैं जैसे कोई राजा हमला करने के लिए तैयार हो, क्योंकि वह ईश्वर पर अपनी मुट्ठी हिलाता है और खुद को सर्वशक्तिमान के खिलाफ प्रदर्शित करता है, एक मोटी मजबूत ढाल के साथ उसके खिलाफ निडरता से हमला करता है। नौकरी जवाब देती है, मैंने ऐसी बहुत सी बातें सुनी हैं, तुम सब दुःखी शांतिदाता हो, क्या आपके लंबे चौड़े भाषण कभी खत्म नहीं होंगे? तुम्हें क्या तकलीफ है कि तुम बहस करते रहते हो? मनुष्य मेरा उपहास करने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, वे तिरस्कार पूर्वक मेरे गाल पर प्रहार करते हैं और मेरे विरुद्ध एकजुट हो जाते हैं। परमेश्वर ने मुझे दुष्ट मनुष्यों के हाथ में कर दिया है और दुष्टों के पंजे में डाल दिया है। मैंने अपनी खाल पर टाट सी लिया है और अपनी भौंह को धूलि में दबा लिया है। मेरा चेहरा रोने से लाल हो गया है, मेरी आंखों पर गहरी छायाएं घूम रही हैं, फिर भी मेरे हाथ हिंसा से मुक्त हैं और मेरी प्रार्थना शुद्ध है। हे पृथ्वी, मेरे खून को मत ढको, मेरी पुकार कभी शांत न हो। अब भी मेरा गवाह स्वर्ग में है, मेरा वकील ऊंचे पर है, मेरा मध्यस्थ मेरा मित्र है, क्योंकि मेरी आंखें ईश्वर की ओर से आंसू बहाती हैं। एक आदमी भगवान से विनती करता है जैसे एक आदमी अपने दोस्त के लिए विनती करता है। इससे पहले कि मैं बिना वापसी की यात्रा पर निकलूं, बस कुछ ही साल बीतेंगे। एलीफास के दूसरे भाषण का मुख्य बिंदु। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के बारे में कितना ऊंचा सोचता है, बल्कि यह है कि यह दूसरों के लिए कितना उपयोगी है। मुसीबत के समय दूसरों को सांत्वना उन बयानों से नहीं मिलती कि ऐसी समस्याओं का कारण वे ही हैं। जीवन छोटा है और अक्सर दुःख से भरा होता है, लेकिन यह जानने से कि मसीह हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है, किसी की पूजा, सम्मान और उसकी प्रशंसा बढ़ जाती है। बिलदाद फिर बोलता है, आप ये भाषण कब खत्म करेंगे? समझदार बनो और फिर हम बात कर सकते हैं। आपकी दृष्टि में हम लोग मवेशी क्यों माने जाते हैं और मूर्ख क्यों समझे जाते हैं? हे क्रोध में आकर अपने को टुकड़े टुकड़े करने वाले, क्या तेरे लिए प्रियवी भी त्याग दी जाएगी? या चट्टानों को अपनी जगह से हटा देना चाहिए? नौकरी जवाब देती है, कब तक तुम मुझे सताओगे और शब्दों से कुचलोगे? अब तक तू 10 बार मेरी निंदा कर चुका है, बेशर्मी से तुम मुझ पर हमला करते हो। यदि यह सच है कि मैं भटक गया हूं, तो मेरी त्रुटि केवल मेरी चिंता बनी रहेगी। यदि तुम सचमुच अपने आप को मुझसे ऊंचा उठाना चाहते हो और मेरे अपमान का प्रयोग मेरे विरुद्ध करते हो, तो जान लो कि परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है और अपना जाल मेरे चारों ओर खींच लिया है। उसने मेरे भाइयों को मुझसे अलग कर दिया है, मेरे परिचित मुझसे पूरी तरह अलग हो गए हैं। मेरे कुटुंबी चले गए, मेरे दोस्त मुझे भूल गए हैं। हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, क्योंकि परमेश्वर के हाथ ने मुझ पर प्रहार किया है। तुम परमेश्वर की तरह मेरा पीछा क्यों करते हो? क्या तुम्हें मेरा मांस कभी पर्याप्त नहीं मिलेगा? मैं जानता हूं कि मेरा मुक्तिदाता जीवित है और अंत में वह पृथ्वी पर खड़ा होगा, और मेरी त्वचा नष्ट हो जाने के बाद भी मैं अपने शरीर में परमेश्वर को देखूंगा। मैं स्वयं उसे अपनी आंखों से देखूंगा, मैं कोई दूसरा नहीं। मेरा हृदय मेरे भीतर कैसा उत्कंठा रखता है। यदि तुम कहते हो, हम उसका पीछा क्यों कर करेंगे, क्योंकि उपद्रव की जड़ उसी में है, तो तलवार से डरना, क्योंकि क्रोध तलवार से दंड देगा, और तब तुम जान लोगे कि न्याय होगा। बिल्दाद के दूसरे भाषण के मुख्य बिंदु। दूसरों के दर्द और पीड़ा के प्रति असंवेदनशीलता एक त्रासदी है, जो अक्सर नेक इरादे वाले दोस्तों द्वारा की जाती है। जान लें कि आपका मुक्तिदाता पीड़ित धर्मात्माओं को राहत देता है। जीवन की त्रासदियों के लिए ईश्वर को दोष न दें, क्योंकि वे उसकी ओर से नहीं हैं, वे शैतान से हैं। वह तुम्हें ईश्वर से अलग करना चाहता है। जोफर फिर बोलता है, मेरे परेशान विचार मुझे उत्तर देने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं। मैं ऐसी फटकार सुनता हूं जिससे मेरा अपमान होता है, और मेरी समझ मुझे उत्तर देने के लिए प्रेरित करती है। निःसंदेह तुम जानते हो कि प्राचीन काल से, अर्थात जब से मनुष्य पृथ्वी पर रखा गया, तब से ऐसा होता आया है कि दुष्टों का आनंद क्षणिक होता है। हालांकि बुराई उसके मुंह में मीठी होती है और वह उसे अपनी जीभ के नीचे छिपा लेता है, हालांकि वह उसे जाने देना बर्दाश्त नहीं करता और उसे अपने मुंह में ही रखता है। उसने कंगालों पर अंधेर किया और उन्हें निराश्रित छोड़ दिया है। उसने उन घरों को जब्त कर लिया है जिन्हें उसने नहीं बनाया था। स्वर्ग उसका अपराध प्रकट करेगा, पृथ्वी उसके विरुद्ध उठेगी। परमेश्वर के क्रोध के दिन बाढ़ उसके घर को बहा ले जाएगी। परमेश्वर दुष्टों को ऐसा ही भाग्य देता है, परमेश्वर द्वारा उनके लिए नियुक्त विरासत भी ऐसी ही होती है। नौकरी जवाब देती है, ए डॉट मेरी बातें ध्यान से सुनो, यही वह सांत्वना है जो आप मुझे देते हैं। जब मैं बोलूं तो मेरे साथ रहो और मेरे बोलने के बाद मजाक करो। बी डॉट दुष्ट लोग क्यों जीवित रहते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और शक्ति में बढ़ते जाते हैं? सी डॉट सर्वशक्तिमान कौन है कि हम उसकी सेवा करें? उससे प्रार्थना करने से हमें क्या मिलेगा? परंतु उनकी समृद्धि उनके अपने हाथ में नहीं है, इसलिए मैं दुष्टों की युक्ति से अलग खड़ा हूं। डी डॉट क्या कोई ईश्वर को ज्ञान सिखा सकता है, क्योंकि वह सर्वोच्च का भी न्याय करता है? ई डॉट मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, किन युक्तियों से तुम मेरे साथ अन्याय करोगे। तुम कहते हो, अब उस महापुरुष का भवन, अर्थात वे तंबू जहां दुष्ट लोग रहते थे, कहां रहे? एफ डॉट तो आप मुझे अपनी बकवास से कैसे सांत्वना दे सकते हैं? आपके उत्तरों में झूठ के अलावा कुछ नहीं बचा है। जोफर के दूसरे भाषण से मुख्य बिंदु। क्या कोई ईश्वर को ज्ञान सिखा सकता है, क्योंकि वह सर्वोच्च का भी न्याय करता है? एलीपज बोलता है, क्या कोई मनुष्य परमेश्वर के लिए लाभकारी हो सकता है? क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी उसे लाभ पहुंचा सकता है? यदि आप धर्मी होते तो सर्वशक्तिमान को क्या खुशी होती? यदि आपके आचरण निर्दोष होंगे तो उसे क्या लाभ होगा? क्या यह तुम्हारी धर्मप्रायणता के कारण है कि वह तुम्हें डांटता है और तुम्हारे विरुद्ध दोषारोपण करता है? क्या तुम्हारी दुष्टता महान नहीं है? क्या तुम्हारे पाप अनंत नहीं हैं? तूने अकारण ही अपने भाइयों से सुरक्षा की मांग की, तूने मनुष्यों के वस्त्र उतारकर उन्हें नंगा कर दिया, तूने थके हुओं को पानी न दिया और भूखों का भोजन रोक दिया, यद्यपि तू शक्तिशाली मनुष्य था और भूमि का स्वामी होकर और उस पर जीवित रहकर प्रतिष्ठित मनुष्य था, और तूने विधवाओं को छूछे हाथ लौटा दिया और अनाथों का बल तोड़ डाला। इसीलिए तुम्हारे चारों ओर फंदे हैं। क्यों अचानक संकट तुम्हें भयभीत कर देता है? क्यों इतना अंधेरा है कि तुम देख नहीं सकते? और क्यों पानी की बाढ़ तुम्हें ढक लेती है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उसके साथ शांति से रहो, इस तरह आपके पास समृद्धि आएगी। उसके मुंह से शिक्षा ग्रहण करो और उसके वचन अपने हृदय में बसाओ। यदि तुम सर्वशक्तिमान के पास लौट आओ तो तुम पुनर्स्थापित हो जाओगे, यदि तुम दुष्टता को अपने तंबू से दूर कर दो। बिलदाद बोलता है, प्रभुता और भय परमेश्वर का है, वह स्वर्ग की ऊंचाइयों में व्यवस्था स्थापित करता है। तो फिर कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने धर्मी कैसे हो सकता है? स्त्री से जन्मा कोई कैसे पवित्र हो सकता है? नौकरी जवाब देती है, आज भी मेरी शिकायत कड़वी है, मेरे कराहने के बावजूद उसका हाथ भारी है। काश मुझे पता होता कि उसे कहाँ खोजना है, काश मैं उसके घर जा पाता। मैं उसके सामने अपना पक्ष रखूंगा और तर्कों से अपना मुंह भरूंगा। मैं पता लगाऊंगा कि वह मुझे क्या उत्तर देगा और विचार करूंगा कि वह क्या कहेगा। क्या वह बड़ी शक्ति से मेरा विरोध करेगा? नहीं, वह मुझ पर आरोप नहीं लगाएंगे। वहां एक ईमानदार आदमी उसके सामने अपना मामला पेश कर सकता था और मैं अपने न्यायाधीश से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता था। परंतु वह जानता है कि मैं कौन सा मार्ग अपनाता हूं। जब वह मुझे परखेगा तब मैं सोना बनकर निकलूंगा। मेरे पैरों ने उसके कदमों का बारीकी से अनुसरण किया है, मैं बिना एक ओर मुड़े उसके मार्ग पर चलता रहा हूं। मैं उसके मुंह की आज्ञाओं से अलग नहीं हुआ, मैंने उसके मुंह के शब्दों को अपनी प्रतिदिन की रोटी से भी अधिक महत्व दिया है। थोड़ी देर तक वे ऊंचे हो गए और फिर चले गए, उन्हें अन्य सभी लोगों की तरह नीचा दिखाया जाता है और एकत्र किया जाता है, वे अनाज की बाल की नाई काट डाले गए। यदि ऐसा नहीं है तो कौन मुझे झूठा सिद्ध कर सकता है और मेरी बातों को व्यर्थ कर सकता है? आपने शक्तिहीनों की कैसी सहायता की है? तूने उस भुजा को जो दुर्बल है कैसे बचाया है? आपने बिना बुद्धि वाले को क्या सलाह दी है? और आपने कितनी महान अंतर्दृष्टि प्रदर्शित की है? आपको ये शब्द कहने में किसने मदद की है? और किसकी आत्मा ने तेरे मुख से बातें की? ईश्वर के जीवन की शपथ, जिसने मुझे न्याय से वंचित किया है, सर्वशक्तिमान, जिसने मुझे आत्मा की कड़वाहट का स्वाद चखाया है, जब तक मेरे भीतर जीवन है, मेरी नाक में ईश्वर की सांस है, मेरे होंठ दुष्टता नहीं बोलेंगे और मेरे जीभ से कोई छल की बात न निकलेगी। मैं कभी नहीं मानूंगा कि आप सही हैं, जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा, मैं अपनी ईमानदारी से इनकार नहीं करूंगा। मैं अपना धर्म बनाए रखूंगा और उसे कभी न जाने दूंगा, जब तक मैं जीवित हूं, मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारेगी नहीं। मैं तुम्हें ईश्वर की शक्ति के बारे में सिखाऊंगा, मैं सर्वशक्तिमान के मार्गों को नहीं छिपाऊंगा। ये तो आप सबने खुद देखा होगा, फिर यह निरर्थक बात क्यों? तो फिर बुद्धि कहां से आती है? समझ कहां रहती है? यह हर जीवित चीज की आंखों से छिपा हुआ है। परमेश्वर इसका मार्ग समझता है और केवल वही जानता है कि वह कहाँ रहता है, क्योंकि वह पृथ्वी के छोर को देखता है और आकाश के नीचे सब कुछ देखता है। जब उसने वायु की शक्ति स्थिर की और जल को नापा, जब उसने वर्षा के लिथे आज्ञा और आंधी के लिथे मार्ग ठहराया, तब उसने बुद्धि की ओर दृष्टि करके उसका मूल्यांकन किया। उन्होंने इसकी पुष्टि की और इसका परीक्षण किया। और उसने मनुष्य से कहा, प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ही समझ है। मैं उन बीते महीनों की कितनी अभिलाषा करता हूँ, उन दिनों की जब परमेश्वर मुझ पर दृष्टि रखता था, जब उसका दीपक मेरे सिर पर चमकता था, जब सर्वशक्तिमान अभी भी मेरे साथ थे और मेरे बच्चे मेरे आसपास थे, तो उन्होंने मेरी सलाह की प्रतीक्षा करते हुए उम्मीद से मेरी बात सुनी। परंतु अब वे मुझसे छोटे लोग मेरा उपहास करते हैं, जिनके पिताओं को मैं अपने भेड़ कुत्तों के साथ रखने से घृणा करता। अब मेरा जीवन समाप्त हो गया है, पीड़ा के दिन मुझे जकड़ लेते हैं, रात मेरी हड्डियों में छेद करती है, मेरी पीड़ादायक पीड़ा कभी शांत नहीं होती। अपनी महान शक्ति से परमेश्वर मेरे लिए वस्त्र के समान बन जाता है, वह मुझे मेरे वस्त्र के गले के समान बांधता है। यदि मैंने अपने दास दासियों को मेरे विरुद्ध शिकायत करने पर न्याय देने से इनकार कर दिया है, तो जब परमेश्वर मेरे सामने आएगा तो मैं क्या करूंगा? हिसाब किताब के लिए बुलाए जाने पर मैं क्या उत्तर दूंगा? यदि मैंने अपना भरोसा सोने पर रखा है या शुद्ध सोने से कहा है, तुम मेरी सुरक्षा हो, यदि मैंने अपनी बड़ी संपत्ति पर, अपने हाथों से अर्जित सौभाग्य पर आनंदित किया है, तब ये भी न्याय के योग्य पाप होंगे, क्योंकि मैं सर्वोच्च परमेश्वर के प्रति विश्वासघाती होता। एलीपस और बिल्दाद से मुख्य बिंदु। अय्यूब अपने मामले की पैरवी के लिए ईश्वर को ढूंढना चाहता था, क्योंकि वह उसके कदमों का बारीकी से अनुसरण करता था और बिना एक ओर मुड़े अपने रास्ते पर चलता रहता था। मसीह उन लोगों के मामले की पैरवी करने वाला मध्यस्थ है जिन्हें ईश्वर ने विश्वास और आज्ञाकारिता के माध्यम से अपने शरीर में डाला है। जब तक मेरे भीतर जीवन है और मेरी नाक में परमेश्वर की सांस है, तब तक मेरे होंठ दुष्टता की बातें नहीं बोलेंगे और मेरी जीभ छल की बातें नहीं बोलेगी। प्रभु का भय यही ज्ञान है। जब भगवान मेरा सामना करेंगे तो मैं क्या करूंगा? जब मुझसे पूछा जाएगा तो मैं क्या उत्तर दूंगा? एलीहू बोलता है। एलीहू अय्यूब पर बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर के बजाय स्वयं को उचित ठहराया। वह उन तीनों मित्रों पर भी क्रोधित था, क्योंकि उन्हें अय्यूब का खंडन करने का कोई रास्ता नहीं मिला था और फिर भी उन्होंने उसकी निंदा की थी। मैं वर्षों से जवान हूँ और तुम बूढ़े हो, यही कारण है कि मैं डरा हुआ था और जो कुछ मैं जानता हूँ तुम्हें बताने का साहस नहीं कर पा रहा था। मैंने सोचा उम्र बोलना चाहिए, उन्नत वर्षों को ज्ञान सिखाना चाहिए, लेकिन यह मनुष्य के भीतर की आत्मा है, सर्वशक्तिमान की सांस है जो उसे समझ देती है। केवल बूढ़े ही बुद्धिमान नहीं हैं, केवल वृद्ध ही नहीं हैं जो समझते हैं कि क्या सही है। मैंने तुम्हें अपना पूरा ध्यान दिया, परंतु तुम में से किसी ने भी अय्यूब को गलत सिद्ध नहीं किया, आप में से किसी ने भी उसके तर्कों का उत्तर नहीं दिया। तूने मेरे सुनने में कहा है, मैंने वही शब्द सुने हैं कि मैं शुद्ध और निष्पाप हूँ, मैं पाक साफ हूँ और अपराध बोध से मुक्त हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, इसमें तुम ठीक नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है। तुम उससे क्यों शिकायत करते हो कि वह मनुष्य की किसी भी बात का उत्तर नहीं देता? क्योंकि परमेश्वर बोलता है, कभी एक तरह से, कभी दूसरे तरीके से, भले ही मनुष्य इसे समझ न सके। नौकरी जवाब देती है, मैं निर्दोष हूँ, परंतु भगवान ने मुझे न्याय नहीं दिया, हालांकि मैं सही हूँ। मुझे झूठा समझा जाता है, यद्यपि मैं निर्दोष हूँ, फिर भी उसका तीर असाध्य घाव कर देता है, अय्यूब के समान कौन मनुष्य है जो तिरस्कार को पानी के समान पीता है। वह दुष्टों की संगति करता है, वह दुष्ट मनुष्यों की संगति करता है, क्योंकि वह कहता है, जब मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है तो उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। मान लीजिए एक आदमी भगवान से कहता है, मैं दोषी हूँ, लेकिन अब और अपमान नहीं करूँगा। मुझे वह सिखाओ जो मैं नहीं देख सकता। अगर मैंने गलत किया है तो दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। जब आप पश्चाताप करने से इनकार करते हैं तो क्या ईश्वर को आपकी शर्तों पर आपको पुरस्कृत करना चाहिए? निर्णय आपको करना होगा, मुझे नहीं, तो मुझे बताओ कि तुम क्या जानते हो। अय्यूब बिना ज्ञान के बोलता है, उनके शब्दों में अंतर्दृष्टि का अभाव है। ओह, एक दुष्ट व्यक्ति की तरह उत्तर देने के लिए अय्यूब की अधिकतम परीक्षा ली जा सकती थी। वह अपने पाप में विद्रोह जोड़ता है, वह हमारे बीच में तिरस्कार पूर्वक ताली बजाता है और परमेश्वर के विरोध में बातें बढ़ाता है। परंतु अब तुम दुष्टों के दंड से दबे हुए हो, न्याय और न्याय ने तुम पर अधिकार कर लिया है। सावधान रहो कि कोई तुम्हें धन के लालच में न डाल दे, एक बड़ी रिश्वत को आपसे दूर न होने दें। क्या आपकी संपत्ति या आपके सभी शक्तिशाली प्रयास आपको सहारा देंगे ताकि आप संकट में न पड़े? एलीहू से मुख्य बिंदु। किसी के ज्ञान और बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत अधिक सोचना पाप और विफलता की ओर एक कदम है। ईश्वर की आत्मा होने का दावा करना ज्ञान होने के बराबर नहीं है। निश्चित रूप से मैंने उन चीजों के बारे में बात की जो मुझे समझ में नहीं आई, वे चीजें मेरे लिए जानने के लिए बहुत अद्भुत थीं। अब सुनो और मैं बोलूंगा, मैं तुमसे प्रश्न करूंगा और तुम मुझे उत्तर दोगे। मेरे कानों ने तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखों ने तुझे देखा है। इसलिए मैं खुद से घृणा करता हूँ और धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। क्रोध में परमेश्वर ने एलीपज, बिल्दद और सोफर से बात की, क्योंकि वे उन बातों के बारे में बात कर रहे थे जिन्हें वे नहीं जानते थे। परंतु धर्मी अय्यूब के कारण उसने उसे क्षमा कर दिया। भगवान बोलता है से मुख्य बिंदु। किसी भी नश्वर मनुष्य के पास ईश्वर या उसकी शक्ति, प्रेम, न्याय या दया को चुनौती देने या सवाल उठाने का ज्ञान या बुद्धि नहीं है।